السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمين. آج ہم انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی کی توفیق سے سورة البقرہ آیت نمبر 21 سے 25 تک سبق کریں گے. دیکھتے ہیں اب تفسیر سورة البقرہ آیت نمبر 21 سے 25 تک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس، اے لوگو. قرآن کریم میں پوری انسانیت کو یہاں ایک حکم دیا گیا ہے اور پوری انسانیت سے خطاب کیا گیا. یعنی یہ پہلا حکم، ابھی تک آپ دیکھیں کوئی حکم نہیں اس طرح سے آیا. پہلا حکم جو دیا گیا ہے قرآن کریم میں وہ پوری انسانیت کو دیا گیا، ساری ہیومینٹی کو. یا ایوہ المسلم نہیں ہے، یا ایوہ الذین آمنو نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ یا ایوہ الناس. اس کا مطلب ہے کہ قرآن صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے اور صرف کافروں کے لیے نہیں ہے کہ ان کو کوئی تبلیغ کر رہا ہے مسلمان تو آل گڈ ہیں. یہ ساری انسانیت کے لیے پیغام دیتا ہے، سب کے لیے آیا ہے. اب یہ یہاں سے دوسرا حصہ شروع ہو رہا ہے. پہلے جو ہم نے 20 آیات پڑھی ہیں وہ اس بارے میں تھی کہ جب ہدایت آ جائے تو انسانیت تین گروہوں میں بٹ جاتی ہے، اور آپ نے وہ تین گروہ دیکھ لیے. وہ کون سے تین گروہ تھے جن کا ذکر سب سے پہلے سورۃ البقرہ میں آیا؟ متقین، پھر کافر، اور اس کے بعد آپ نے 13 آیات منافقین کے بارے میں پڑھی. اور آپ نے یہ بھی پڑھا کہ ان میں صرف ایک گروہ ہے جو کامیاب ہونے والا ہے، اور اس کے بعد کے جو دونوں گروہ ہیں وہ ناکام ہونے والے ہیں، چاہے ان میں سے ایک گروہ ایسا کیوں نہ ہو کہ جو منہ سے تو یہ بولتے ہیں کہ ہم ایمان لے کر آئے لیکن اس کے باوجود وہ ناکام ہے. اب یہاں سے جو آیات شروع ہو رہی ہیں تو اللہ تعالی نے بتا دیا ہے کہ تم نے کیا کرنا ہے، کیا تمہارا آگے زندگی کے اندر تمہارا کیا طریقہ ہوگا، کس طرح سے تم چلو گے کہ تم کامیاب ہو جاؤ، اس گروہ میں شامل ہو جاؤ جو کامیاب ہونے والا گروہ ہے. اس کے لیے ایک ضابطہ بیان کیا گیا بڑے ہی کمپریہنسو طریقے سے، ایک یعنی ایک رولز آپ کو بتا دیے گئے، اور پھر اس کے لیے دلیل بھی دی گئی ہے. تو کیا ذریعہ ہے، کیا کریں ہم کہ ہم اس پہلے گروہ میں شامل ہو جائیں؟ وہ پوری انسانیت کو کہا گیا ہے کہ آپ یہ کام کرو تاکہ آپ کامیاب ہو جاؤ. تو یا ایوہا کے ساتھ بات شروع کی گئی، اس کے بعد الناس سے ہمیں پتا چلا کہ ساری انسانیت کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ دعوت دی ہے. اس کے بعد وہ حکم آیا، اس کا مطلب کوئی بات کہی جا رہی، جب کسی کو آپ نے کچھ پکارتے ہیں کسی کو تو کوئی بات ہی اس کو بتانی ہوتی ہے یا کوئی حکم دینا ہوتا ہے. تو کیا حکم دیا گیا؟ اور عبودو، عبادت کرو. عبادت کے لفظ کو دیکھتے ہیں، عبادت کس کو کہتے ہیں؟ عبادت کا لفظ عبد سے نکلا ہے. ہم اس کو سورۃ الفاتحہ میں دیکھ چکے ہیں. یہ عبد کون ہوتا ہے؟ غلام، بندہ. بندگی بھی اصل میں غلامی ہے. और जब आप गुलाम को देखती हैं तो आपको कैसा एक तस्वुर आता है जहन में, वो जो इतात गुजार हो, जो झुका रहे, जो हमेशा हुक्म का इंतजार करे और वैसे ही करे, उसी को गुलाम कहते हैं ना, जिसमें आजजी हो, जो अपने मालिक के सामने एक आजिज खड़ा हुआ। जहन में लेकर आए गुलाम आपके जहन में कैसे, बेशक आपने गुलाम देखे नहीं है लेकिन आपके जहन में क्या आता है, ऐसा ही तस्वुर आता है ना। तो यानी इतात तजल्लुल के साथ, ऐसी इतात, इबादत का मतलब हमने पता नहीं क्या समझा हुआ है। अगर आज तक कुछ और समझा हुआ था तो अब से अपनी डेफिनेशन जरा क्लियर कर लें कि इबादत इतात का नाम है, और वो इतात जो तजल्लुल के साथ की जाए और मोहब्बत के साथ की जाए, यानी उसके अंदर इंतहाई अपने आप को जलील कर देना, गिरा देना, आजजी और मोहब्बत। आप देखें इतात वो भी होती है जो कि बस मारे बांधे की हो, कि मुसीबत पड़ गई हमें, कोई किसी का गुलाम है, गुलाम होते थे वो, कोई खुशी से तो नहीं किसी की इताअत कर रहे होते थे अपने मालिक की। लेकिन ये डिफरेंट है, इसमें क्या है, इसमें इंतहाई मोहब्बत भी है और इंतहाई आजजी भी है। तो ये याद रखें, इसमें मोहब्बत का पहलू आता है और इस वजह से आपको वो गुलामी जो के गुलाम पुराने जमाने में किया करते थे वो वाली बात नहीं है, ये वो गुलाम है जो अपने आका से इंतहाई मोहब्बत करता है और इंतहाई उसके साथ सामने झुका हुआ है और उसके हुक्म का गुलाम है, उसके हुक्म की पूरी इतात गुजारी करने वाला है। कब तक अपने आका की इतात गुजारी है गुलाम, अपने आका की इतात गुजारी सारी जिंदगी करता है, यानी जब तक वो उसका गुलाम है। और अब हम यहाँ पे आगे फिर ठीक है आगे देखते हैं, फिर उसके बाद हम इसके ऊपर और बात करते हैं, किसकी इबादत करो, लोगों की इबादत करना शुरू कर दो कि उनकी इताअत हो रही है और उनके आगे झुक जाओ और उन्हीं से मोहब्बत करो, या कोई सिस्टम है उसकी इबादत करना शुरू कर दो, या अपने नफ्स की इबादत करना शुरू कर दो, बहुत सारी चीजों की इबादत होती है। नहीं, तुम उसकी करो जो रब है तुम्हारा, रब्बकुम, और रब रब वो होता है। अब रब का भी हम देख लें, वैसे तो हम रब बहुत बोलते हैं, रब में बहुत सारे माने आते हैं, रब मालिक भी है, रब लिख लें आप ये सैयद भी है, रब मुरब्बी भी है, रब मुनाइम भी है और रब कय्यिम भी है। ये पांच माने मैंने आपको बताए, अब देखते हैं एक एक करके। इसके अंदर मालिक होने का माना है, यानी जिसकी मिल्कियत है, यानी जो तुम्हारा मालिक है उसकी इबादत करो। मालिक है यानी उसने तुम्हें पैदा किया है, तुम उसकी मिल्कियत हो, जिसने कोई चीज बनाई होती वही उसका मालिक होता है ना। तो उसने तुम्हें पैदा किया है, वो तुम्हारा मालिक है और पूरी तरह मालिक है, इसमें किसी की शराकत नहीं है। फिर वो सैयद है यानी हुक्मरान है, सरदार है। फिर मुरब्बी है, मुरब्बी वो होता है जो तरबियत करने वाला, मुरब्बी उसको कहते हैं जो के पाल पोस के, परवान चढ़ाए, कमाल तक पहुंचाए, यानी उसकी मिच्योरिटी तक, उसके उरूज तक उसको पहुंचाए। और मुनइम भी है, नेमते देने वाला, बहुत ज्यादा नेमते निछावर करने वाला। और कय्यिम भी है यानी सस्टेनर, तुम्हारी हस्ती कायम रखने वाला, तुम्हारी हस्ती कायम ही नहीं रह सकती थी अगर वो कायम ना रखता तो, क्योंकि सिर्फ पैदा कर देने से थोड़ी जिंदा रह सकता कोई, सिर्फ पैदा करके छोड़ दिया होता ना, ऑक्सीजन देता ना, रिस्क देता ना, कोई टेम्परेचर उसके मुताबिक रखता ना, कोई और उसकी निगहदाश्त का इंतजाम करता, तो वो हस्ती कायम ही नहीं रह सकती थी, उसी वक्त खत्म हो जाता। लेकिन वो कायम रखने वाला है, ये सारे मानी है। अब खुद सोच लें कि कि रब के अंदर क्या क्या आता है, और कोई और रब नहीं हो सकता। यहाँ पे अबुदुल्ला नहीं कहा गया, अबुदुर रहमान नहीं कहा, अबुदुर रब्बा कुम, जो तुम्हारा रब है, यानी पूरी इंसानियत का रब वही है, पूरी इंसानियत का मालिक, खालिक, पालने वाला, परवरिश करने वाला, नेमतें देने वाला, उनकी हस्ती को कायम रखने वाला, सबका वो एक अल्लाह है। तो इसलिए कोई और नाम नहीं यहाँ पे लाया गया, रब का लाया गया। और आप देखें हमने स्टार्ट में क्या पढ़ा था, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमी, रब वहां पे भी आया था। अल्लाह ताला ने अपना तारुफ किससे करवाया था, ये नहीं कि वो पहले अर्रहमान रहीम है, बल्कि पहले वो कि वो तुम्हारा रब है। तो तारुफ ही अपना इंट्रोडक्शन ही कि उसका, मैंने आपको उस वक्त भी ये बात बताई थी, आपको याद है, ये मैंने आपको बताया था कि उसका तुम्हारे साथ जो रिश्ता है वो क्या रिश्ता है। जैसे आप कहें कि एक औरत का एक बच्चे के साथ रिश्ता क्या है, वो माँ है और ये उसकी औलाद है, ठीक है। एक मर्द और औरत का रिश्ता आप कहते हैं, इनका रिश्ता आपस में क्या है, ये उसका शौहर है, इसकी बीवी है, ठीक है। फिर आपने देखा कि एक लड़के और लड़की का रिश्ता क्या है, ये उसका भाई है, ये उसकी बहन है। तो हर एक में कई रिश्ता होता है ना, आप बताएं आपका रिश्ता अल्लाह ताला के साथ क्या है, वो रिश्ते को आप कैसे बयान करेंगे। तो ये कि वो मेरा रब है, बात समझ आ गई, वो मेरा रब है। तो रब कौन होता है, वो जो मेरा मालिक भी है। अब उससे सारे माने ले हैं, मालिक भी है, मुझे पालता भी है, मुझे जो भी चीजें आज तक दीनी है, मुनीम यानी नियमते, जितनी भी मेरे ऊपर नियमते हैं जो काउंटलेस हैं, वो भी उसने दी है। और ये सारे माने अब देख लें पालने के अंदर आ ही जाते हैं, देखे ना, और मालिक में भी आ जाते हैं। जो किसी चीज का मालिक होता है ना, वो उसकी केयर भी करता है। अच्छा, अब केयर टेकर, मुरब्बी को समझ लें, केयर टेकर, जब केयर किसी की जाती है तो उसके अंदर मोहब्बत भी होती है, उसके अंदर उसकी जरूरियात का ख्याल करना भी होता है, उसको चीजें देना भी होता है। तो नेमते खुद ही आ गई, वो उसको सस्टेन करना भी होता है कि वो कायम रहे, ये नहीं वो चीज ही खत्म हो जाए। तो मालिक में भी और मुरब्बी में भी, और नेमते इंसान उसी को देता है जिसकी वो केयर कर रहा होता है, ये वो तुम्हारा रब है। और जब मैंने आपको बताया था रब का लफ्ज आता है, तो उसके ऑपोजिट क्या कौन होता है, यानी अगर आप कहें ये मेरी माँ है, तो इसका मतलब आप क्या है, आप बेटी हैं फिर, ठीक है। आप किसी को कहती हैं ये मेरा शौहर है, तो इसका मतलब आप उसकी बीवी हैं। कहने की जरूरत नहीं कि मैं बीवी हूं, ये मेरा शौहर, आपने जब कह दिया ये मेरा शौहर है, तो इसका मतलब क्या, कि आप बीवी हैं, ठीक है। जब आप कहते हैं अल्लाह मेरा रब है, जैसे यहां पे अल्लाह ताला ने बता दिया रब्बुकुम, सारी इंसानियत का रब अल्लाह ताला है, तो अब इसका मतलब क्या है, सारे उसके क्या हैं, गुलाम है। रब मास्टर को कहते हैं, उसके आगे स्लेव होता है, ठीक है। तो रब मालिक, तो उसके आगे गुलाम, तो ये समझ लें कि सब उसके गुलाम है, वो ओनर है, वो खिलाता है, पिलाता है, जरूरियात को पूरी करता है। इसीलिए आप कह रहे हैं ना वो मुनाइम है, नेमते मुझे सारी उसने ही दी, और इसीलिए आप कह रहे हैं मुरब्बी है, वो पाल भी रहा है, परवरिश कर रहा है, तो परवरिश करने में सब कुछ ही आ गया। तो उसकी इबादत करनी है जो रब है, क्यों करनी है, एक तो वो तुम्हारा रब है, दूसरी क्या बात है, अल्लज़ी खलक़कुम, उसने पैदा किया तुमको, ठीक है ना, तुम तो कुछ भी नहीं थे ना, तुम्हारा वजूद क्या था। अब सोच लें कि 1900 में मैं और आप कहाँ थे, हमारे को नामो निशान तक नहीं था, और उससे पहले जितनी सेंचुरीज गुजर गई, आदम अलैहि सलाम का गुजरा जमाना, नूह अलैहि सलाम का गुजरा, आप सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम का जमाना गुजरा, हम कहाँ थे, मैं और आप क्या थे, हम उनके हालात पढ़ते हैं, मैं उस वक्त कहाँ थी, कोई नाम तक नहीं था, इवन हमारे पेरेंट्स का भी नाम नहीं था, इवन हमारे बाप दादा का भी नाम नहीं था उस वक्त। तो यानी एक ऐसा लामतनाही जमाना गुजरा है जिसमें हम कुछ भी नहीं थे, और एक ऐसा लामतनाही जमाना गुजरा है जिसमें हमारी रूहें भी नहीं थी। पता नहीं कब से अल्लाह ताला ने ये कायनात बनाई, उसके बाद 50,000 साल गुजरे, फिर अल्लाह ताला ने कलम को हुक्म दिया लिखो, और फिर उसके बाद आसमान जमीन को पैदा किया। उसके बाद कितना जमाना गुजरा, हम कुछ भी नहीं थे। उसके बाद फिर अल्लाह ताला ने रूहें पैदा की, और फिर अंदर कहीं हमारी रूह थी। उसके बाद भी हम कुछ नहीं थे, फिर हम हमें अल्लाह ताला ने दुनिया में भेजने का इंतजाम फरमाया। और जब मां के पेट में थे तब भी कुछ नहीं थे, फिर अल्लाह ताला ने हमें पैदा फरमाया। तो खलककुम, पैदा किया तुमको, ये कितना बड़ा उसका एहसान है कि उसने तुम्हें पैदा किया। आज ये तुम देख रहे हो, सुन रहे हो, सोच रहे हो, चल रहे हो, फिर रहे हो, इस जमीन के ऊपर मजे उड़ा रहे हो, ये इसलिए कि उसने तुम्हें पैदा किया है, राइट? अगर वो तुम्हें पैदा ही ना करता तो तुम क्या थे, तुम्हारी हस्ती ही ना होती। एक मेरे और आपके ना होने से क्या फर्क पड़ जाना था इस दुनिया में, कुछ भी नहीं। कितना बड़ा एहसान है उसका कि अल्लाह तुमने मुझे पैदा फरमा दिया। वो सिर्फ पैदा नहीं फरमाया, ठीक ठाक पैदा फरमा दी, अकल शऊर देखना सुनना बोलना सब सलाहियतें दे दी, और जिंदगी की ये सांसें दे दी। तुमको पैदा किया, आज तुम ये पढ़ रहे हो कि अबुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम, वो इसलिए पढ़ रहे हो कि तुम जिंदा बैठे हुए हो, इसलिए पढ़ रहे हो कि तुम आज शऊर रखते हो। तो आज आप इस वक्त पे पहुंचे कि आप ये आयत पढ़ रहे हैं। इससे पहले बहुत सारा जमाना गुजर चुका है कि मैं और आप कुछ ना थे, और बहुत सारा ऐसा भी वक्त गुजर चुका है जब हमें कोई शऊर ही नहीं था। तो जो ये पढ़ रहा है इसका मतलब है वो जिंदा है, वो सुन देख बोल सकता है, उसको ये बताया जा रहा है, देखो जिस हस्ती ने तुम्हें पैदा किया ना उसी के आगे झुको, अबुदू उसी की इबादत करो। और इबादत के अंदर एक और चीज भी आ जाती है, इबादत का मतलब इस तरह से भी आप समझ सकते हैं कि इबादत है कि जिसकी इबादत की जाए उसी को अपना मतलूब मकसूद और महबूब बनाया जाए। मकसूद मतलूब और महबूब बनाया जाए, यानी मकसद हयात वही हो, तलब उसी की हो, बस सारी जिंदगी उसी की तलब हो, और सबसे ज्यादा महबूब भी वही हो। और यही मकसद है हमारा इस दुनिया में आने का भी। सूरह ज़ारियात में अल्लाह ताला ने फरमाया वमा खलकतुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियाबुदून, नहीं पैदा किया गया जिन और इंस को सिर्फ एक काम के लिए, सिवाय एक काम के कि वो इबादत करें। अल्लाह ताला ने फरमाया इसके आगे हम अल्लाह ताला को तुम्हारे से कोई रिस्क नहीं चाहिए, और ना ये चाहिए कि कोई उसको खिलाए, उसको ये नहीं चाहिए, वो तो खुद रज़ाक है। तुम रिस्क के पीछे भागे फिरते हो, तुम ये समझते हो जिंदगी का मकसद ये है कि बस कमाओ कमाओ और खाओ। उसको तुमसे कोई रिस्क नहीं चाहिए, ना उसको ये चाहिए कि तुम उसको खिलाओ, वो तो तुम्हें खुद खिलाता पिलाता है। वो हुआ रज़ाक ज़ुल कुव्वत अल मतीन है। तो हमारा दुनिया में आने का मकसद ही ये है कि हम इबादत करें अल्लाह ताला की, और हम इबादत को ही नहीं समझ पाए आज तक कि क्या चीज है इबादत। जिसको हम कहते हैं या क्या नाबुदू, हम सिर्फ तेरी इबादत करते हैं, हम आज तक ही ना जान पाए कि इबादत होती क्या चीज है, हमने क्या समझा है कि क्या होती है इबादत। ये तो हमें समझ आ गई, उसने ही पैदा किया तुमको भी, ये आगे पढ़ लेते हैं फिर उसके बाद बताते हैं। वल्लदीन मिन कब्लिकुम, और उनको भी जो तुमसे पहले आए, कौन पहले आए, जितने हमारे अबाउ अजदाद और उनसे भी पहले के लोग सेंचुरीज तक जितने आते रहे उनको भी उसी ने पैदा किया। क्योंकि कई लोग कहते थे हमें पैदा करने वाले तो हमारे माँ बाप है, और उनको पैदा करने वाले उनके माँ बाप, उनको पैदा करने वाले उनके माँ, नहीं तुम्हें भी अल्लाह ने पैदा किया और उनको भी अल्लाह ताला ने ही पैदा किया। कोई भी फिर ये नहीं कह सकता कि मुझे पैदा करने वाला कोई और है। पीछे तक भी चले जाएं तो आदम अलैहिस्सलाम पे तो जाके रुकेंगे ना, उसको उसने पैदा किया, उसको उसने पैदा किया, उसको किसने पैदा किया? आदम अलैह सलाम। तो आदम अलैह सलाम को भी तो किसी ने पैदा किया होगा ना, वो कहाँ से आए? तो कहीं तो जाके आपको रुकना पड़ेगा और ये जवाब देना पड़ेगा कि कोई हस्ती है जिसने पैदा किया। और यहां पर रब का ही लफ्ज क्यों लाया गया, एक ये भी बात को समझे, इसलिए कि सबसे पहले इंसान उससे मानूस होता है जो उसको पालने वाला होता है। अब देखिए ना, माँ पालती है, उससे ही सबसे पहले इंसान मानूस होता है, उसी का शऊर आता है। जब उसको कोई समझ नहीं होती तब भी उसको ये समझ होती है कि कौन है जो मेरा केयर टेकर है, कौन है जो मुझे खिलाता है पिलाता है। तो फरमाया रब वो है जो तुम्हें पालने वाला है, तुम्हें उसकी पहचान नहीं है जिसने तुम्हें अपने हाथों से बनाया। ये बताएं, हम जब किसी को मसलन हम एक जानवर लेकर आते हैं घर में, उसको खिलाते हैं पिलाते हैं, उसकी फिर क्या करते हैं, सिर्फ खिलाते पिलाते हैं। नहीं, जब हम कहते हैं ना हम इसको पाल रहे हैं, आपने बकरी लेकर आया आप उसको पाल रहे हैं, अब उसके रहने का भी बंदोबस्त करेंगे, फिर आप देखेंगे भी कि देखें सर्दी शदीद हो गई है तो इसको कोई हीट का भी बंदोबस्त करें, या गर्मी बहुत ज्यादा हो गई मरी ना जाए तो इसके लिए वो भी इंतजाम करेंगे, फिर उसके पानी का, उसके खाने का, वो बीमार तो नहीं हो गई, वो हर तरह से उसको देखते हैं ना। ये थोड़ी होता है पालने में कि सिर्फ एक चीज देख रहे हैं। जब मिल्कियत का काम होता है, जब आप मालिक बनते हैं किसी चीज के, अपने आप को कहते हैं मैं इसकी मालिक हूं, तो फिर आप देखेंगे फिर आप किस तरह उस चीज को सारी केयर करते हैं। इसी तरह पालने में भी जब आप किसी को पालते हैं तो उसके अंदर भी शफकत होती है, मेहरबानी होती है, तभी आप उसकी जरूरियात भी पूरी कर रहे होते हैं। तो अल्लाह ताला ने बड़ी शफकत के साथ इंसान को, अब बड़े लुत्फ करम के साथ, बड़ी मोहब्बत के साथ इंसान को पालता है। और इसी पालने के लिए वो ये एक नहीं दो दो लोगों का इंतजाम फरमाता है कि एक को माँ कहते हैं और एक को बाप, के जो हर वक्त उसी के पीछे दौड़ते रहते हैं, एक कमाने में लग जाता है और एक उसको उसकी परवरिश करने में लग जाती है। तो मालिक का फिर क्या हक होता है? फिर मालिक का क्या, जब आप मसलन जानवर को देख लें, अब आपने सारी उसकी जरूरियात पूरी की हैं, तो अब आप क्या चाहते हैं कि ये मेरी खिदमत करे? ठीक है, मैं अब इसकी जरूरियात पूरी करती हूँ, ये मेरे आगे सर झुकाए रखे और जिस तरह से मैं इसको चलाऊं वैसे चले, ये नहीं है कि ये खुद स्टबल हो। जो कहता है कि अल्लाह मेरा मालिक है, मेरा रब है, तो आप खुद सोचें कि फिर उसको क्या करना चाहिए और कैसा होना चाहिए। हर वक्त झुका हुआ, अपनी ख्वाहिशात के आगे नहीं झुकना, लोगों के आगे नहीं झुकना, अल्लाह ताला के आगे झुकना। क्यों? वो मेरा रब है। और जो अपने आप को अल्लाह ताला के आगे झुका देता है, उसका गुलाम बना लेता है, वो सारी गुलामियों से बच जाता है। वरना इंसान कभी इसका गुलाम, कभी उसका गुलाम, फिर कभी आप इसको राजी करने में चले में, कभी उसको मनाने में चले में। लेकिन अगर आप एक अल्लाह के गुलाम बन जाते हैं तो अल्लाह सुबहाना ताला आपको सारी गुलामियों से निजात दे देता, दर दर की ठोकरें खानी नहीं पड़ती। तो इंसान सिर्फ अल्लाह ताला का अब्द बन जाए, सच्चा गुलाम बन जाए, और गुलाम वो होता है जिसका अपना कुछ नहीं होता, सब कुछ उसके मालिक का होता है। ये भी आपको गुलामी से ये भी कॉन्सेप्ट पता चलता है ना, गुलाम का ना अपना वक्त होता है, ना अपनी जान होती है, ना उसका कोई अपना माल होता है, ना उसकी कोई अपनी मर्जी होती है, ना अपनी मर्जी से खाता है, ना अपनी मर्जी से पीता है, ना अपनी मर्जी से अपनी टाइम टेबल बनाता है, उसके सारी कुछ चीजें उसका मालिक ही कर रहा होता है। हालांकि ये हम बात कर रहे हैं एक ऐसे मालिक की जो कि जिसने उसको पैदा नहीं किया है। देखिए, इस दुनिया के अंदर जो गुलाम और मालिक का रिश्ता होता है, उसमें मालिक ने पैदा नहीं किया होता, खरीद के लाया होता, सिर्फ पैसे दिए होते हैं उसके, ना वो उसको आंखों का निजाम चलाता है, ना उसके कानों का, ना उसके मेदे का, ना उसके उसकी जिंदगी का कोई मालिक होता है, वो कुछ भी नहीं, यानी उसकी सांसें चल रही हैं गुलाम की, या नहीं चल रही, मालिक का इस पे कोई जोर नहीं होता। ठीक है, मालिक ने उसको पैदा करके उसको परवरिश नहीं किया होता। देखिए, जब अल्लाह ताला की बात करते हैं ना, तो वो मालिक है। अब थोड़ा सा इसलिए आपको गुलाम और मालिक का दुनियावी जो इंसानी रिश्ता है ना, उससे इसलिए एग्जाम्पल दी जा रही है। इसको बिल्कुल हम ऐसे नहीं कर सकते कि कयास करें अल्लाह ताला की मिल्कियत, क्योंकि अल्लाह ताला तो इंसान का तब से मालिक है जब वो कुछ भी नहीं था, जब वो रूह था और जब वो माँ के पेट में था, और कैसे उसको दुनिया में लेकर आया, उसकी तो मिल्कियत पूरी है। और देखिए, जिस चीज़ के आप मालिक होते हैं ना, उससे आपको मोहब्बत होती है। देखिए, अब आप बहुत सारी घर होंगे, लेकिन आपको अपना घर अच्छा लगता है। बहुत सारी गाड़ियां होंगी, लेकिन आपको अपनी गाड़ी अच्छी लगती है। बहुत सारे बच्चे होंगे, लेकिन उनमें आपको अपना बच्चा सबसे प्यारा लगता है, क्योंकि मेरा है ना वो। तो जब अल्लाह ताला फरमाता है कि रब मैं हूं तुम्हारा, तो वो है मालिक जब, तो उसको अपनी मखलूक बहुत प्यारी लगती है। उसने अपने हाथों से पैदा किया, तो ये याद रखें कि वो मालिक है जो मोहब्बत करता है। दुनिया के उन मालिकों की तरह नहीं आप कह सकते जो कि जुल्म करते हैं अपने गुलामों पर, वो वाले नहीं है बात। तो वो ऐसा मालिक है जो अपनी अब्द से, अपने बंदे से मोहब्बत भी करने वाला है, शफकत भी करने वाला है, उसको पालता भी है, उसके ऊपर नेमतें की बारिश भी करता है, और उसको कायम भी रखे हुए। उस रब की तुम इबादत करो। अब हम सोचते हैं कि जब इबादत का लफ्ज आता है, तो हम सोचते हैं कि इबादत का माना शायद ये है कि बस हमने नमाज पढ़ ली, हमने रोजा रख लिया, हमने हज कर लिया, ज़कात दे दी, बस इबादत हो गई हमारी, पूरी पूरी इबादत है, हम तो पूरे पूरे आबद हैं। नहीं, ये तो सिर्फ वो जरिए हैं जिनसे आप अपना आप दिखा रहे हैं कि अल्लाह मैं तेरी गुलामी में हूं। गुलामी जब होती है, तो गुलाम ये नहीं कहता अब जी ये वाले काम जो है ना मैं करूंगा, बाकी मैंने नहीं करने, और मेरी जॉब 9 to 5 है, उसके अलावा मैं बाकी वीकेंड पे छुट्टी रखूंगा और रात को मैं नहीं कोई काम कर सकता, मेरे ये आवर्स हैं। ये नौकर हो सकता है, गुलाम नहीं हो सकता। और अल्लाह ताला की जब गुलामी में है, तो वो तो इससे बहुत ज्यादा ऊपर की बात है। देखिए, ये नहीं आप कह सकते मैं ये मानूंगी और ये नहीं मानूंगी। नमाज तो पढ़ लेती हूँ, लेकिन आगे इससे आगे नहीं मेरे से कुछ होता। हमने जैसे पिक एंड चूज की बात की थी पिछली दफा, कि जिस चीजों में अपनी सहूलत में, जिसमें कोई कुछ कहता ना हो, जिसमें किसी की तेवरी ना चढ़े, जिसमें कोई मसला ना हमारे रास्ते में आए, और हमें भी वो काम करना अच्छा लगता हो, तो वो हम कर लेते हैं, बाकी को छोड़ लें, तो वो तो मुनाफ़िकत की निशानी है। और जब हमने कह दिया कि अल्लाह हमारा रब है और हम उसके बंदे हैं, तो फिर ये तो बात सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई बंदा ये कह दे, कोई गुलाम ये कह दे कि मैं ये बातें मानूंगा और ये बातें नहीं मानूंगा। या कोई गुलाम ये कहे कि ये हुक्म ये क्यों दिया गया, इसकी पहले एक्सप्लेनेशन दी जाए मुझे। अब हमारे बच्चे हमारे गुलाम नहीं है, लेकिन उनसे भी हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि मैंने कह दिया उठ जाओ तो अब उठ जाओ। बच्चा आपसे पूछे, आप मुझे क्यों सुबह सुबह उठा रही हैं, आप मुझे क्यों स्कूल भेज रही हैं, इससे मेरा क्या फायदा होगा, पहले मुझे सारा फायदा बताएं, पहले मुझे ये बताएं, पहले आप बताएं ये कर क्यों रही हैं आप, इसमें मेरी क्या बेहतरी, इसमें हिकमतें क्या हैं, आपको पसंद आएगा। आप उसको कहती हैं ये खाओ, अब आपने खाना उसके आगे रखा, वो आपसे 10 सवाल कर रहा है, हर बात पे वो कहता है पहले मुझे एक्सप्लेन करो, आपको पसंद आता है ये। चलें बच्चे को छोड़ें, आप नौकर को देख लें, आपके नौकर आपसे पूछने शुरू हो जाए, बाजी आप पहले एक्सप्लेनेशन दें इसकी, आपको कैसा लगेगा? आप कहेंगे बस जैसे मैंने कहा वैसे करते जाओ, मुझे सवाल मत करो, और अल्लाह ताला के आगे खड़े हो के बंदा क्या करता है, ये क्यों किया, वो क्यों ऐसा हुक्म दिया, ये कैसे हम मान सकते हैं, इसमें क्या हिकमत हो सकती है, उसके फैसलों में ऐसे कहते हैं, ये फैसला उसने मेरे लिए क्यों कर दिया, ये फैसला तो मुझे पसंद ही नहीं आया, उसने मेरे साथ ये क्यों किया, वो क्यों किया, नहीं वो आपको एक्सप्लेनेशन देगा। वो आपका मालिक है, मालिक तो जो मर्जी करे, आप जिस चीज के मालिक होते हैं, आप अपने घर में कोई तोड़ फोड़ करें, कुछ भी करें, कोई आके कहे ये क्यों कर रहे हैं, तो आप क्या कहते हैं, मैं इस घर की मालिक हूं, जो मर्जी करो, तुम कौन होते हो मुझे कहने वाले। और यहां पे वो जो अपने आप को गुलाम कहता है, वो ही उठ के पूछना शुरू कर देता है, वो ही ऐसे एक्सप्लेनेशंस मांगता है, वो ही हुक्मों की पहले मांगता है कि इसकी हिकमतें बताएं, इसमें मेरा क्या फायदा है, ऐसा क्यों और वैसा क्यों। तो हम किस किस्म के गुलाम हैं, खुद सोचिए अपने आप को रख के, कि मैं रब रब तो कहती हूं और दुआओं में भी कहती हूं, रब्बना आतिना रब्बी जिदनी अल्मा, कितनी बातें करती हूं, लेकिन जब इस रिश्ते का जो मामला है, जो ताल्लुक है मेरा इस रिश्ते के नाम के ऊपर, मैं तो अल्लाह ताला से बहुत कुछ मांगू, लेकिन जब इस रिश्ते के तकाजे आए कि मेरे से क्या रिक्वायर्ड है, क्या डिमांड किया जा रहा है, तो उस वक्त मैं बिल्कुल अजनबी बन जाऊं, उस वक्त पता ही नहीं कि गुलाम क्या और रब क्या। गुलाम मैं इसलिए बार बार कह रही हूं कि आपको उससे समझ में आए कि क्या हमारा रोल बनता है इस रिलेशनशिप में जो हमारा अल्लाह ताला के साथ है। अगर हम इस रोल को ही नहीं समझे तो फिर हम कैसे इबादत करेंगे। तो वो नहीं कह सकता कि मैं ये कर सकता हूं, ये नहीं कर सकता, मैं नहीं जी, अब मैं इतना मान सकता हूं, इतना नहीं मान सकता, ये मुश्किल है और ये आसान है, और ये हुक्म क्यों दिया गया, और ये हुक्म ऐसे क्यों नहीं दिया गया, ऐसे क्यों दिया गया। और क्या अल्लाह ताला उन्हीं लोगों का रब था जो 1400 साल पहले थे, या सारी इंसानियत का रहती दुनिया तक वो ही रब है। फिर हम ये कैसे कह सकते हैं कि नहीं, वो उस जमाने के लिए तो ये हुक्म था और अब के लिए ये हुक्म नहीं है। तो ये चीजें हम नहीं कह सकते जी। आप लोगों को आवाज आ रही है सबको मिक्सलर पे? अगर किसी को नहीं आवाज आ रही, वो यूट्यूब पे जा सकते हैं। तो ये हम नहीं कह सकते कि हम ये मानेंगे और ये नहीं मानेंगे। जब आपने मान लिया कि अल्लाह ताला हमारा रब है, तो अब रब की माननी पड़ेगी, अब अपनी नहीं मान सकते। लेकिन इसके बावजूद लोगों ने बहुत सारे रब बनाए हुए हैं और उनकी मानते हैं और उन्हीं को समझते हैं, ये मेरा रोजी रसा है, ये मेरे रिस्क देता है, और ये मुझे मेरे साथ आ, आ, मुझे सारी चीजें देने वाला यही है। लेकिन रब की पहचान क्या है, देखो कि किसने पैदा किया तुमको, वो ही तुम्हारा रब है। इस मामले में कोई भी नहीं कह सकता कि मुझे पैदा फलां हुक्मरान ने किया, फलां बुत ने किया, फलां ने किया, कोई भी नहीं कह सकता, जिसने मेरे पिछलों को भी पैदा किया और मुझे भी पैदा किया, ये कोई नहीं कह सकता। तो उसने पैदा किया तुमको, सबसे बड़ा और पहला एहसान जो अल्लाह ताला ने इंसानियत को बताया कि तुम तो थे ही नहीं। सोचो तो सही, देखिए बाकी सारी नेमतें तो बाद में आती ना, चाहे आप कितनी नेमतें गिनवाएं, इस्लाम भी एक नेमत, कुरान भी एक नेमत, खाना पीना देखना सुनना बोलना, ये जितनी भी हवा, ये ऑक्सीजन, ये सब, ये सारी नेमतें आप जितनी मर्जी गिनवा दें, अगर आपकी हस्ती ही ना होती तो ये नेमतें किस काम की थी आपकी। सबसे पहले तो यही बात है ना कि उसने जिंदगी दी तुम्हें, पैदा कर दिया तुम्हें, और इंसान की सूरत में पैदा किया, कोई कीड़ा नहीं बना दिया, कोई परिंदा नहीं बना दिया, कोई मछली नहीं बना दिया, इंसान बनाया। यही आंखें होती, यही कान होते, और कोई जानवर होते तो क्या होता, कोई कुत्ता बिल्ली कोई कीड़ा होते तो क्या होता, खुद सोचिए। ये किस लिए, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम तकवा इख्तियार करो, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, ये बताया गया। इसके लिए ये तुम इबादत करो, क्योंकि मुत्तकी होना शर्त है, मुत्तकी होना जरूरी है अगर तुम कामयाब होना चाहते हो। तो तकवा का माना क्या है, तकवा दरअसल उस एहसास का नाम है जो हमारे अंदर अगर आ जाए ना, वो एहसास अगर पैदा हो जाए ना, तो हम मुत्तकी बन जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये लफ्ज बार बार कुरान में आएगा, बार बार आएगा। जन्नत के बारे में भी कहा गया, उद्दत लिल मुत्तकीन, वो मुत्तकीन के लिए बनाई गई है। तो अब हमें तकवा ही ना पता हो तो फिर बस चलते रहें, फिर ठीक है, मुत्तकी होते होंगे कोई जो के बहुत पहुंचे हुए लोग हैं ना, वो मुत्तकी होते हैं। नहीं, मैं और आप भी मुत्तकी बन सकते हैं। तकवा जो होता है वो दिल में होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना, तकवा हा होना, दिल की तरफ इशारा करके 3 दफा फरमाया। तो इसका मतलब वो दिल में कोई चीज है। वो क्या चीज है? वो एक एहसास है। कौन सा एहसास? मेरे दिल में आए तो मैं मुत्तकी बन सकती हूं, जानना चाहते हैं? ये एहसास कि मैं अल्लाह ताला की नाराजगी से बच जाऊं और उसकी रजा हासिल कर लूं। बस लफ्जी माना इसका बचना डरना, बेशक है वो भी किस तरह से इसके साथ रिलेट होता है कि हर गुनाह से बचना, ठीक है, और हर नेकी के मौके को खोने से बचना, क्योंकि दोनों में अल्लाह ताला की नाराजगी होती है ना। आपने गुनाह कर लिया तब भी नाराजगी है, नेकी के मौके यानी नमाज पढ़ना एक नेकी, आपने वो खो दिया वो भी अल्लाह ताला की नाराजगी है। तो इसलिए ये बचना और डरना, इसलिए ये लफ्ज आते हैं। लेकिन असल में बचना डरना को हम किस तरह से, कैसे प्रैक्टिकली इसको कैसे लेकर आएंगे? बचना डरना किस चीज से? बचूं डरूं क्या करूं मैं? तो उसके लिए सिंपल अल्फाज में कि हर गुनाह से बचना और हर नेकी के मौके को अवेल करना, ये है तकवा प्रैक्टिकली। लेकिन दिल में क्या है? बस हर वक्त स्ट्रोंग ये एहसास हो कि बस कहीं अल्लाह ताला मुझसे नाराज ना हो जाए, अल्लाह ताला की नाराजगी से बचना। तो अल्लाह ताला की नाराजगी किस में होती है? गुनाहों में। और उसकी रजा हासिल करने की कोशिश करना, वो कैसे होती है रजा हासिल? नेकियां करना। अब तकवा के भी लेवल्स है, किसी के अंदर ज्यादा होगा, किसी के अंदर कम होगा। ठीक है, तो जिसके अंदर ये बात होगी कि उसके अंदर ये एहसास होगा, और जितना शदीद एहसास होगा उतना ही वो ज्यादा मुत्तकी होगा। और ये एहसास सिर्फ ये नहीं, मैं कह सकती मेरे अंदर बहुत तकवा है जी, और ना मैं कोई अल्लाह ताला का हुक्म मान रही हूं ना कुछ है, बहुत तकवा है, बहुत तकवा है। ये तकवा नहीं होता इसलिए कि जब दिल में शदीद एहसास होगा ना कि मैं अल्लाह ताला की नाराजगी से बच जाऊं, तो फिर यकीनन वो आपके एक्शन में आएगा, पूरी जिंदगी में वो रिफ्लेक्ट करेगा। इसलिए कि जैसे मैं कहूं कि मैं मिसाल के तौर पे कहीं आग लगी हुई है और मैं कहूं मैं आग से बचना चाहती हूं, मेरे अंदर बहुत ही एहसास है मैं आग में जलना नहीं चाहती, तो क्या मैं अब आग की तरफ चल पड़ूंगी? नहीं चलूंगी ना, उससे दूर भागूंगी। तो मेरे एक्शन में आया ना वो, क्योंकि वो मेरे दिल में था कि मैंने इस चीज से बचना है। तो कैसे हो सकता है हम कहें अल्लाह की नाराजगी से बचना है और सारे वो काम करते जाएं जो अल्लाह ताला की नाराजगी के हैं? तो क्या तकवा है फिर? तो ये नहीं कोई कह सकता जी मेरे अंदर तो बहुत है और आप ना मुझे जज करें, मेरे अंदर तो कितना तकवा है भाई, आपको क्या पता मैं कितने अंदर से पाक और कितने अच्छे मुसलमान हैं, ये तो हमारा अंदर ही जानता है। अगर बाहर से मैं बेपर्द नजर आ रही हूँ, बेनमाजी नजर आ रही हूँ, झूठ बोलती नजर आ रही हूँ, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मेरे अंदर तकवा नहीं है। आपको क्या पता? पर नहीं, ये बात नहीं हम कर सकते, इसलिए क्योंकि अगर तकवा अंदर होता तो जरूर एक्शन में नजर आता। ठीक है, तो इसके लिए हमें ये समझना है कि जब हमने अल्लाह ताला की इबादत करनी है तो वो किस लिए करनी है? ताकि हम उसकी नाराजगी से बच जाएं और उसको राजी कर सकें। लअल्लकुम तत्तकून यहाँ पे इसलिए आया। और ये कैसे होगा, ये इबादत भी कैसे होगी, इबादत कैसे करनी है? तो इसी के लिए तो अल्लाह ताला ने अपने नबी को मबूस फरमाया कि आप इनको कॉपी कर लो, आपको पता चल जाएगा इबादत कैसे होती है। ठीक है, आप प्रैक्टिकली देखना चाहते हैं ना, आप कहते हैं ये तो हो ही नहीं सकता जी, ये तो ऐसे कैसे चल सकता है इस दुनिया में, तो फिर आप नबी अलैहिस्सलाम को देख लें, उन्होंने इबादत करके दिखाई, वो रोल मॉडल है। ठीक है, और हमें पता चलता है उनकी जिंदगी से कि इबादत सिर्फ ये नहीं है कि गुलामी की तो बस नमाज और रोजा कर लिया, फिर गुलामी हर जगह पे है, चाहे मैं जॉब पे हूं उसमें भी मैं अल्लाह की गुलाम हूं। ठीक है, चाहे मैं घर में रहती हूं अकेली हूं तब भी मैं अल्लाह की गुलाम हूं, चाहे मैं किसी पार्टी में बैठी हूं तब भी मैं अल्लाह की गुलाम हूं, चाहे शादी ब्याह का मौका है तब भी मैं अल्लाह की गुलाम हूं, चाहे कोई फौत हो जाता है तब भी मैं अल्लाह की गुलाम हूं, हर वक्त में मैं 24/7 अल्लाह ताला की गुलाम हूं। कब तक? हत्ता हताल यकीन, जब तक कि मौत नहीं आ जाती। अल्लाह ताला की गुलामी में ही इंसान को अपनी जिंदगी बसर करनी, क्यों क्या कोई छुट्टी नहीं हो सकती? तो आप छुट्टी लेते हैं सांस लेने से, खाना खाने से आप छुट्टी लेते हैं कि आपकी वेलबींग रहे? हैं अको कभी छुट्टी नहीं लेते, तो फिर हम कैसे सोच सकते हैं कि अल्लाह ताला की इबादत में छुट्टी हो जाए? अल्लाह ताला आपको ये नहीं कहता कि आप हर वक्त मुसल्ले में बैठे रहें, लेकिन हर वक्त अल्लाह ताला चाहता है कि हर मौके पे जिस चीज में अल्लाह ताला राजी होता हो वो करें। मिसाल के तौर पे आप रिस्क कमाने जा रहे हैं, तो जिस रास्ते से अल्लाह ताला राजी होता हो उस रास्ते से रिस्क कमाया जाए, जिसमें उसकी नाराजगी आपने वो छोड़ दिया। जिस महफिल में बैठने से अल्लाह ताला नाराज होता हो आपने वो महफिल छोड़ देनी। अब इसमें मुसल्ले पे बैठने वाली बात नहीं आ रही है, इसमें आपकी डेली लाइफ आ रही है, आपका दिन और आपकी रात आ रहे हैं। जिस वक्त सोने में अल्लाह ताला नाराज होता है, अब फजर की अजान हो रही है, वक्त जा रहा है, हम सोए पड़े, जिस वक्त सोने में अल्लाह ताला नाराज होगा उस वक्त हम सोए नहीं, उठ के खड़े हो गए जाए मुसल्ले पे। जिस चीज के अंदर अल्लाह ताला चाहता है कि इस तरफ हमारे कदम ना बढ़े, उस रास्ते की तरफ हमारे कदम नहीं बढ़ने चाहिए। जिन लोगों के साथ अल्लाह ताला नहीं चाहता कि हम इनके साथ गहरी दोस्तियां बढ़ाएं, वो ऐसे लोग हैं जो कि अल्लाह ताला के नाफरमान हैं और नाफरमानी कर रहे हैं, और हम उनके साथ बैठे हुए और हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो वहां से हम बचे। जहां पे अल्लाह ताला फरमा रहा है कि अपनी नजरें झुका लो, यहां पे नजरें नहीं उठानी, नजरें उठाने में अल्लाह की नाराजगी है, वहां पे हमने नजरें झुका ली, क्योंकि उठाऊंगी तो अल्लाह ताला नाराज होता है। तो यानी हर जगह के ऊपर जिस चीज को सुनने में पता है इसमें अल्लाह ताला की नाराजगी है, ये सुनना सही नहीं है, मेरे अंदर तकवा होगा तो मैं वो सुनना बंद कर दूंगी। जिस बोल के अंदर अल्लाह ताला की नाराजगी है वो मैं बोल बोलना बंद कर दूं, ये है तकवा। फिर तो इसको मिसअंडरस्टैंड ना करें, ये है अल्लाह की इबादत, जिससे ये तकवा तकवा होगा तो फिर ही अल्लाह की इबादत, और अल्लाह की इबादत होगी तो तकवा आएगा। यानी इबादत समझ रहे हैं, समझ के करते हैं तो तकवा आ जाएगा आपके अंदर, और तकवा होगा तो आप सारे ऐसे ही काम करते रहेंगे जिसमें अल्लाह ताला की रजा और उसकी नाराजगी से बच जाए। तो इबादत अब्द का माना, इबादत आपको लेकर जाएगी तकवा तक। इबादत जब अल्लाह ताला की होगी, जब आपने समझ लिया कि वो रब कौन है जिसकी मैंने इबादत करनी है, तो जाहिर है आपके अंदर ये चीज आएगी कि मैंने उसकी नाराजगी से बचना, उसने वो तो मेरा मालिक है, वो तो मेरा खालिक है, वो तो मुझे सारी चीजें देने वाला ही वो है, उसके हाथ में मेरा रिस्क है, उसके हाथ में मेरी जिंदगी है, उसके हाथ में मेरे बच्चे हैं, उसके हाथ में मेरा घर बार है, उसके हाथ में मेरा क्याम है, सब चीजें उसके हाथ में, तो मैं कैसे ना उसके आगे झुकूं, मैं कैसे ना उसकी इताअत करूं। इसलिए इस चीज को समझने की जरूरत है कि वो जो हम पर अपने कर्म की बारिश कर रहा है, जो हम पर अपनी नेमतों की बारिश कर रहा है, उसकी गुलामी से निकलने के हम चोर दरवाजे ना ढूंढे, हम लूप होल्स ना निकालने की कोशिश करें। देखिए, अच्छा गुलाम, अच्छा नौकर वही होता है जो रुख्सतें नहीं हर वक्त मांग रहा होता, जो हर वक्त एक्सक्यूजेस नहीं दे रहा होता, जो हर वक्त कोई मौका नहीं तलाश कर रहा होता है बच जाने का, कि मैं कहीं इधर उधर हो जाऊं, उनसे नजर बचा लूं, इनको पता ही ना चले, उधर छुप के बैठ गया, मुझे कोई काम ही ना कहते। बाद में कह दिया मुझे तो सुना ही नहीं, मुझे तो आपकी आवाज आई नहीं। आप उस गुलाम को क्या कहेंगे, आप उस नौकर को क्या कहेंगे? अच्छा गुलाम वो होता है जो समय ना वाता ना करता है, सुन लिया और मान लिया बस बगैर चूं चरां के। अगर मेरी अकल इतनी बड़ी है कि मैं ही हर चीज समझ जाती हूं, और मेरी समझ में आना जरूरी है हर हुक्म का क्योंकि मैं इतनी अकलमंद हूं, तो फिर मेरी गुलामी क्या रही? फिर तो मैं खुद ही अपनी मालिक बन के बैठ गई, फिर किस चीज की गुलामी है? गुलाम ने तो अपनी अकल भी झुका दी, अपना आप भी झुका दिया। गुलाम बन के रहना सीखें, ये ना देखा करें कि मैं इसमें से किस तरह निकल सकती हूं, मेरी सहूलत किस काम को करने में है, ये देखें मेरा मालिक किस चीज से खुश होता है। जैसे हम उसी नौकर को अपना वफादार समझते हैं जो हमारी बातें मानता है, और हम फिर बाद में कहते भी हैं, हम अपनी मेड्स के बारे में कहते हैं ये तो ना एक्स्ट्रा काम भी कर देती है, ये तो खुद ही देख लेती है ये काम करने का, आगे बढ़ के खुद ही कर लेती। आपको वही पसंद आती है ना, आप खुद बताइए, वो तो आपकी मेड है सिर्फ, आपके घर में 2-3 घंटे के लिए काम करने आती होगी, तो आप उसके ऊपर भी चाहते हैं कि वो हर चीज ठीक ठीक करे, और जो मेड इधर से काम चोरी करे उधर से काम चोरी करे, पैसे लेने के वक्त तो खड़ी हो जाए, एक्स्ट्रा भी मांगे, लेकिन काम करते वक्त उसकी जान जाए, तो आप उसके बारे में क्या कहते हैं? हम चाहते हैं कि हमारी हर दुआ इससे पहले कि हमारी जुबान पे आए तो पहले ही कबूल हो जाए। भाई मैंने तो इतनी दुआएं मांगी ये तो कबूल नहीं हुई, इतने हम गिले शिकवे करने खड़े हो जाते। दुआओं के मामले में हम चाहते हैं हमारी हर दुआ जो लिस्ट है ना पूरी की पूरी बिल्कुल उसी वक्त कबूल हो जानी चाहिए, देर भी ना लगे कहीं। लेकिन जब हमने अल्लाह ताला को उसका हक देना होता है, ये अल्लाह ताला का हक है कि उसकी इबादत की जाए और उसी की जाए, या क्या नाबुदू भी बोलते हैं, लेकिन इबादत जिंदगी में कहीं नजर नहीं आती हमें, ये हम वाकई एक अच्छे अब्द हैं। और नेक्स्ट टाइम हम फिर अपने नौकरों से तो कोई शिकायत नहीं कर सकते क्योंकि खुद देख लें कि हम किस किस्म के नौकर हैं। फिर इब्ने मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल पूछा कि सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला के साथ जो तुम्हारा खालिक है किसी को शरीक ठहरा देना, यानी उसकी इबादत नहीं औरों की भी इबादत। कोई पैसे की इबादत कर रहा है, पैसे को पूज रहा है आज, कोई किसी हुकूमत को पूज रहा है, जो उसने अच्छा कह दिया तो अच्छा है, बुरा कह दिया तो बुरा है, वो ही बस उनके आगे झुके हुए समय ना वाताना उनकी कर रहे हैं। तो जिसने अल्लाह ताला की इबादत खालिस होके नहीं की तो फिर वो एक अच्छा अब्द नहीं है बल्कि सबसे बड़ा गुनाह है ये। और अल्लाह का हक बंदों पे क्या है कि उसकी इबादत की जाए और किसी को उसके साथ शरीक ना किए। फिर बंदों का अल्लाह ताला पे क्या हक है, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमा दिया, तो हम कहते हैं वरना बंदे का अल्लाह पे कोई हक नहीं बनता। जैसे गुलाम का कोई हक नहीं, गुलाम का है मेरा हक क्या है कि आप मुझे इतने इतने पैसे दिया करें, मालिक कहेगा तेरा कैसे हक हो गया, मैं तेरा मालिक हूं, मैं जो मर्जी दू नहीं दू। तो बंदों का वैसे कोई हक नहीं है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया, आपने हमें फरमाया, तो हम ये कह सकते हैं कि बंदों का फिर अल्लाह ताला पे हक ही है कि जब बंदे अल्लाह ताला का ये हक दें तो बंदों का अल्लाह पर अब क्या हक बन जाता है कि अब अल्लाह ताला उनको आजाब ना दे, जब बंदे अल्लाह का हक देने वाले। तो यही सूरत है कि जब इंसान अजाबों से बच सकता है, कयामत के दिन में नाकामी से बच सकता है और कामयाब लोगों में हो सकता है।